Shanti. तो बाबा कह रहे थे, बाप का प्यार ही ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना, तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीत। अगर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे। अगर ऐसे राजे बने जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते, वो सतयुग भी तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। इसलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो। जब ये कंप्लेंट करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मन जीत हुए। आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजय के संकल्प है। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते वो क्या विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए चेक करो, कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत कहां तक बने हैं। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं, राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीत। अगर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजयी नहीं तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे। अगर ऐसे राजे बने जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। इसलिए चेक करो, मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो। जब ये कंप्लेन करते हो कि आज मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन आज भटक रहा है, तो बाबा कहते क्या ये मन जीत हुए। मन उदास है, मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजय के संकल्प है। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते वो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे। सारे पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। हमारी लड़ाई किससे है? स्वयं से है। स्वयं को ही जीतना है। मन बुद्धि और संस्कार, मन बुद्धि अगर एक समझा जाए तो मन बुद्धि और दूसरा है संस्कार। तो ये जो भी संकल्प है, मेरा मन आज नहीं लगता, मेरा मन आज भटक रहा है, मन उदास है, मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये सब परवश आत्मा की निशानी है। विजयी आत्मा की निशानी नहीं है, विजय के संकल्प नहीं है। तो चेक करो, कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत कहां तक बने हैं। सारी ही कर्मेंद्रिय, यहां बाबा स्थूल कर्मेंद्रियों की भी बात नहीं कर रहे, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की बात कर रहे हैं। हम अपने मन को जान ले, बुद्धि में क्या है वो जान ले और संस्कारों को जान ले। तो अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। दो तीन दिन पहले मुरली में था ना, परसों, ये पढ़ाई कब पूरी होगी? जब एक भी कर्मेंद्रिया धोखा न दे तब, जब कर्मेंद्रिय जीत कर्मातीत होंगे तब ये पढ़ाई पूरी होगी। सारी ही कर्मेंद्रिया शीतल हो जाए, सारी कर्मेंद्रिया शांत हो जाए, सारी कर्मेंद्रिया, एक एक कर्मेंद्रिया सुगंधित हो जाए। कर्मेंद्रियों में जो विकारों के रस है, कर्मेंद्रियों में जो विकारों की बदबू है, वो निकल जाए, उसे कहेंगे मन जीत, संस्कारों पर जीत, कर्मेंद्रिय जीत। आगे बाबा कह रहे हैं, बाप दादा ने देखा है कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान की जीवन अच्छी भी लगती है, ज्ञान सुनना सुनाना इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है? विशेष कारण है कि जो कहते हो जो सुनते हो उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट का क्या कम है? अनुभव कम है। ज्ञान की जीवन अच्छी लगती है, उमंग उत्साह बहुत है, ज्ञान सुनना और सुनाना इसमें तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा बाबा से भी अच्छा भाषण करने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है? विशेष कारण है कि जो कहते हो जो सुनते हो उस एक एक गुण, शक्ति, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। मानो सारे दिन में स्वयं भी व दूसरे को भी कितनी बार कहते हो, क्या कहते हो? मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, कितनी बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरे को भी कहते हो, लेकिन चलते चलते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है। सुनना कहना ज्यादा है और अनुभूति कम है, लेकिन सबसे बड़ी ऑथोरिटी अनुभव की होती है। तो उस अनुभव में खो जाओ। क्या कह रहे बाबा? सबसे बड़ी ऑथोरिटी अनुभव की होती है, तो उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति का वह गुण समय पर अनुभव में नहीं में आए। कोई भी कई भी कई तो बोलते भी रहते हैं, क्या कहते हैं? सहनशीलता धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। अगर सभी से पूछो, क्या पूछो, कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है, तो थोड़े हाँ कहेंगे। तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्म में अनुभव हो, सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में, कर्म में शक्ति या गुण स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। कहते ही वो ज्ञान स्वरूप है, तो वह स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना, और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता। अज्ञान काल की जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है, तो जब भी कोई बात होगी तो वो स्वरूप दिखाई देता है, छिपता नहीं है, चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वह दिखाई देता है। स्वयं को भी अनुभव होता है और दूसरों को भी अनुभव होता है। क्या कहते हैं? ये है ही क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोध का है, तो संस्कार दिखाई देता है ना। ऐसे ये ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव में आए, तो अनुभवी मूर्त ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है अनुभवी मूर्त, और वो अनुभव स्वयं को तो हो ही रहा है, परंतु दूसरों को भी हो, वो उसके आगे की स्टेप है। पहला है संपूर्ण अनुभवी स्वरूप, तो अनुभव को बढ़ाओ, जो कहा वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता तो उसका कारण ये है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह बहुत है, ज्ञान की जीवन अच्छी लगती है, ज्ञान सुनना सुनाना अच्छा लगता है, परंतु फिर भी चलते चलते कमजोरी आती है, तो उसका कारण है अनुभव की कमी। तीन चीजें बताई, एक ज्ञान की पॉइंट्स का अनुभव, गुणों का अनुभव और शक्तियों का अनुभव, ये तीन। सबसे पहला ज्ञान का अनुभव। ये कहते तो हो कि मैं आत्मा हूं, तुम आत्मा हो, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, परंतु जो आत्मिक अनुभूति है वो कम है। कहना और सुनना वो ज्यादा है। फिर शक्तियों के लिए भी कहा बाबा ने, सहन शक्ति धारण करनी चाहिए। सहन शक्ति अच्छी है लेकिन अनुभूति नहीं है, तो ज्ञान की भी नहीं है अनुभूति, न शक्तियों की अनुभूति है और गुणों की फिर। और जो स्वरूप होता है, अनुभव होता है, वो कैसा होता है? सदा होता है, कभी कभी नहीं होता है। केवल अमृत वेला अनुभव होना और शाम को अनुभव होना और दिन में अनुभव नहीं होना, इसको अनुभव स्वरूप नहीं कहेंगे। अनुभव अगर होना चाहिए तो निरंतर ही होना चाहिए। अगर निरंतर नहीं हो रहा है तो जो समय प्रति समय विधि मिलती है उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो क्या होगा? रिवाइज करेंगे तो रियलाइज सहज होगा। रियलाइज अर्थात अनुभव। तो रियलाइज अनुभवी स्वरूप बनने की विधि क्या है? रिवाइज करना। किसको रिवाइज करना? ज्ञान को। किसको रिवाइज करना? गुणों को। 36 गुणों की लिस्ट लगी है, उनके ऊपर नजर जब भी पड़े तो उनको रिवाइज करना। ज्ञान को रिवाइज, गुणों को रिवाइज और शक्तियों को रिवाइज। रिवाइज नहीं करते हो तो क्या होता है? रियलाइजेशन भी कम है। सुना बहुत अच्छा, लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। कब रिवाइज होना चाहिए? चलते फिरते। ज्ञान रिवाइज होना चाहिए, गुण रिवाइज होने चाहिए और शक्तियां रिवाइज होनी चाहिए। फिर ज्ञान में भी जो ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, इसकी भी रियलाइजेशन। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इसकी ही गहराई में चले जाना। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, वाक्य छोटा है परंतु उसकी रियलाइजेशन। अतिंद्रिय सुख ब्राह्मणों की निशानी है, बाबा ने आज कहा है, विशेषता है, परंतु मनसा संकल्प के बंधन इसे खत्म कर देते हैं। तो सुख स्वरूप आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, इस चीज की रियलाइजेशन। और वो रियलाइजेशन निरंतर होती रहे, केवल अमृत वेले के शांत वातावरण में नहीं, केवल बाबा के कमरे में नहीं, केवल जब योग की भट्टी है तब नहीं, निरंतर। चाहे वातावरण में कितनी भी हलचल हो, जो रेलवे का प्लेटफॉर्म होता है वहां पे जो लोग सोते हैं फुटपाथ पे आधी रात भर, उनको उस आवाज से कोई डिस्टरबेंस होता है क्या? और यहां से कोई अगर ट्रेन चालू हो जाए कैसे कर दिया यूज्ड टू, निश्चिंत होकर सोते हैं। उन्हें नींद तब नहीं आती है जब रेलवे का स्ट्राइक होता है। जो भी डिस्टर्बेंसेस है, पहले पहले जरूर डिस्टर्ब हुए होंगे, पर धीरे धीरे वो फुटपाथ पर सोने वालों को आदत हो गई। उन्हें नींद अब तब नहीं आती है जब रेलवे बंद हो जाती है ना। कई सालों पहले कनाडा में एक ट्रेन चालू हुई थी, रात को 3 बजे निकलती थी वो। शुरुआत में जब ट्रेन की इजाद हुई, इन्वेंशन हुआ, तब एक ट्रेन जो चालू होती थी तो रात को 3 बजे चलती थी वो ट्रेन। पूरे शहर से चलती थी वो ट्रेन और उसकी आवाज भी थोड़ी ज्यादा होती थी, शुरुआत की जो ट्रेनें थी। तो कई लोगों ने सोचा, रेलवे अधिकारियों ने, कई साल तक चली वो। फिर उन्होंने सोचा कि भाई लोगों को बहुत परेशानी होती है इसके वजह से, लोगों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो उन्होंने कमेटी बनाई और सोचा कि इस ट्रेन का टाइमिंग थोड़ा चेंज कर दिया जाए, ये रात को 3 बजे ना चले, दिन में चले। और उन्होंने वैसा किया, तो परिणाम ये हुआ कि कई लोगों की नींद ही रात को 3 बजे खुल जाती थी और फिर बाद में नींद नहीं आती थी, उल्टा ही परिणाम हुआ उसका। ये सोच के कि आवाज क्यों नहीं आई, सब कुछ हमारे मन पर है, हम उसे किस तरह अभ्यस्त करते हैं। जो भी डिस्टर्बेंसेस है वो हमें डिस्टर्ब करे ना करे ये हमारे ऊपर है। मुंबई में जो सेंटर है ना विले पार्ला, वहां से एरोप्लेन हर एक एक घंटे में कंटिन्यूस, अगर कोई नया चला जाए तो कहेंगे क्या है ये, यहाँ तो ना तो योग है ना तो नींद है ना कुछ है, बस आवाज भी आती रहती है। पर वहां के जो है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उससे, उनको आवाज ही नहीं आती। ओम निवास के बिल्कुल पास से ट्रेन जाती है, पीछे से ही, पर वहां के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कार्य चालू है, सेवाएं सब चालू है। अभ्यास की बात है, एक्सेप्टेंस की बात है। योग में बैठे हैं परंतु अगर थोड़ा सा भी दरवाजा हिलता है या मोबाइल बजता है तो डिस्टर्बेंस होना, अर्थात हमने उसे स्वीकार ही नहीं किया है अभी तक कि ये सब होगा, हमें चाहिए कि ये कुछ नहीं होना चाहिए तो योग होगा, परिस्थितियां अनुकूल हो तो योग होगा। परंतु योग संपूर्ण हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में ही बनना है, विपरीत परिस्थितियों में ही हम संपूर्ण बनेंगे। जब सब कुछ हमारे मन जैसा हो तब नहीं होगा, ये भी अच्छा हो ये भी अच्छा हो, ड्यूटी भी अच्छी मिले, नाइट में कोई जगाए नहीं, कॉल ना करे, रात को लेट ना हो सोने के लिए, ये सब अनुकूल परिस्थिति है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ही संपूर्ण बनना है और प्रतिकूल परिस्थितियों में संपूर्ण बनने में ही शोभा है, गौरव है। तो हम थे अनुभव पर, अनुभव हर चीज का अनुभव हो, केवल कहने मात्र नहीं, केवल सुनने मात्र नहीं, केवल भाषण देने मात्र नहीं, केवल दूसरों को प्रभावित करने मात्र नहीं, केवल ज्ञान को सिद्ध करने मात्र नहीं, परंतु अनुभव, हर चीज का अनुभव, ज्ञान का अनुभव अर्थात ज्ञान के एक एक पॉइंट का अनुभव, एक एक वाक्य का अनुभव, एक एक शब्द का अनुभव। और बाबा ने यहाँ क्या कहा, एक बहुत अच्छी बात भी आई है यहाँ पर, कहना सुनना ज्यादा है और अनुभव कम है, लेकिन सबसे बड़ी ऑथोरिटी अनुभव की होती है, तो उस अनुभव में खो जाओ, उस अनुभव में खो जाओ। बोधि धर्म था एक, वो जब भारत में आया, बहुत बड़ा बुद्ध का शिष्य था या अनुयायी था, बोधिसत्व उसका नाम था, बोधि धर्म। वो जब भारत आने लगा तो उसके 4 शिष्य थे, उसने उनसे पूछा कि तुमने अब तक जो सत्य का अनुभव किया है, सत्य जो सीखा है मुझसे, उसका वर्णन करो, क्या तुमने सीखा है, सत्य की क्या परिभाषा है, क्या समझ तुम क्या समझते हो सत्य क्या है। पहले ने कहा सत्य विराट है, पहले ने कहा सत्य विराट है, अव्याख्य है, व्याख्या नहीं की जा सकती है, अवर्णनीय है। दूसरे ने कहा कि सत्य अनुभव है, सत्य प्रतीति है, सत्य साक्षात्कार है। तीसरे ने कहा सत्य मौन है। चौथी जो शिष्या थी, वो शिष्या थी, स्त्री थी, उसके चरणों में गिर गई और कुछ बोला ही नहीं। वो बोधिसत्व कहा जिसने पहला जो था, जिसने कहा कि सत्य क्या है, विराट है, अव्याख्य है, उसके पास मेरा मांस है, मतलब उसने ये प्रश्न पूछा था, इस तरह से भी वो प्रश्न था कि सत्य क्या है, और उस आधार से मैंने आज तक तुम्हें जो सिखाया तुमने क्या क्या लिया। वो कहता है उसे कि तुम्हारे पास मेरा मांस है। दूसरे ने जिसने कहा कि सत्य जो है वो अनुभव है, वो कहता है तुम्हारे पास मेरी हड्डियां हैं। तीसरा जो है उसने जो कहा कि सत्य मौन है, वो कहता है तुम्हारे पास मेरा खून है, रक्त है। और चौथा जो है, जो स्त्री है जो उसके चरणों में गिर गई, वो उसको कहता है कि तुम्हारे पास तो मेरी आत्मा है। कैसे? पहला उत्तर था कि सत्य अव्याख्य है, अवर्णनीय है। पर इस सिद्धांत का ही खंडन हो रहा है जब तुम ये कह रहे हो कि सत्य अव्याख्य है। अव्याख्य है कहना ही उसकी व्याख्या करना हो गया ना। बाबा यहाँ कह रहे खो जाओ, व्याख्या क्यों कर रहे हो? सत्य को की व्याख्या करना अव्याख्या, यह कहना भी उसकी व्याख्या करना हो गया। दूसरा, यह कहना है कि सत्य अनुभव है, प्रतीति है। ये अनुभव नहीं है, शब्द हो गए, क्योंकि तुम शब्द कह रहे हो ना, उसको बोल रहे हो, वह है अनुभव। फिर शब्दों में क्यों कह रहे हो कि वो अनुभव है? वो वही खंडित हो गया, क्योंकि अगर वो अनुभव है तो ये तो कहना कि वो अनुभव, ये भी शब्द है। इसके लिए तुम्हारे पास मेरी हड्डियां है, बस तुमने मेरी हड्डियां लेने के अधिकारी हो। तीसरा कहता है कि वो मौन है, परंतु ये कहना ही मौन खंडित हो रहा है। ये कह क्यों रहे हो कि वो मौन है? चौथा कुछ कहता ही नहीं,
तीनों से सीख गया,
अनुभव में खो जाओ। उसकी व्याख्या करना या कहना कि वो बहुत बड़ा है, बहुत श्रेष्ठ है, अनुभव में खो जाना अर्थात चुप, कुछ बोलना ही नहीं। ये बोलना कि वो बोलना नहीं है, ये भी नहीं, ये बाबा चाहते हैं, उस अनुभव में खो जाना, उस एक ज्ञान की पॉइंट में खो जाना। उसकी व्याख्या करना, उसका वर्णन करना, चर्चा करना, डिस्कशन करना, ये जरूरी है उसको समझने के लिए, परंतु उस सत्य के निकट पहुंचने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता है। एकांत में, उस एक वाक्य में, उस एक महावाक्य, उस एक शब्द या उसके अनुभव में गुम हो जाना, खो जाना, इसकी आवश्यकता है। इसके लिए हमारा ज्ञान इतना आसान नहीं है जितना हमने समझ रखा है। ये वाक्य, ये बोल, ये शब्द, ये भाव बहुत ऊंचे है, जिसके लिए खोना पड़ेगा, खोने के लिए राजी होना पड़ेगा। अनुभव में खो जाना, अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। सब कुछ है एक छोड़कर अनुभव, और जिसको अनुभव हो जाता है उसको कोई, उसके विचार, उसके जो सिद्धांत है उसे कोई बदल नहीं सकता। फिर एक बार अगर अनुभव हो गया तो, एक बार वो टेस्ट अगर मिल गई परमात्मा प्रेम की, डिवाइन नेक्टर जिसको कहते हैं, वो प्राप्त होने के बाद संसार का कुछ भी आकर्षित नहीं कर सकता। कल की मुरली में था, अविनाशी खुशी केवल अविनाशी बाप से ही प्राप्त होगी, बाकी ये सब है विनाशी खुशियां। बाइस्कोप की बात चल रही थी, ये सब है विनाशी खुशियां, अविनाशी खुशी केवल अविनाशी बाप से ही प्राप्त हो सकती है। बाकी संसार में वो तो बाइस्कोप देखकर भी लोग खुश होते हैं, नहीं देखते तो रात को नींद नहीं आती है, बाबा ने कहा। परंतु वो है पतित बनने का पुरुषार्थ, पतित बनने बिगर रह नहीं सकते। तो ये अनुभूति हो जाना कि ये व्यर्थ है, ये अनुभूति हो जाना कि ये विनाशी है, और अविनाशी केवल उसी से प्राप्त हो सकता है, और कोई सोर्स ही नहीं है, और कोई माध्यम नहीं है। इस संसार में चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, परंतु हमें वो नहीं दे सकता जो उससे मिलेगा। लोहे के बंधन हमने काट दिए, उन्हें काटना बहुत आसान है, परंतु सोने के बंधनों को काटने को मन राजी नहीं है। जो सोने के बंधन जो यहां है, क्यों? क्योंकि वो जेवर श्रृंगार की तरह लगते हैं। इतना आसानी से वैराग्य की तलवार हम नहीं चलाना चाहते, बड़ा प्यार है इन बंधनों से, आकर्षण है। ये बंधन को हम समझते तो है, परंतु वो काटना तो बहुत आसान है, उसमें आकर्षण है, उसमें क्या, वो बंधन छोड़ दिए और यहाँ आ गए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो लोहे की जंजीरें थी, ये सोने की जंजीरें है, ये सोने की जंजीरें, इसमें थोड़े बड़े भारी शब्द है, सेवा, सद्भाव, शुभ भावना, विश्व कल्याण जैसे शब्द इसमें समाहित है कहीं ना कहीं। ये भी बड़ी मुश्किल से मिले, इसके लिए इससे इससे अद्भुत सा लगाव है, अद्भुत सा प्रीत है कि तलवार तो उठती है परंतु मन नहीं करता इसको काटने का। ये बन के ही बंधन है, मन ही नहीं कहता है कि इसको काट। एक मन तो कहता है कि सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ, दूसरा उसको तो काटते है पर ये नहीं कटता है। अच्छा लगता है, ऐसा लगता है और थोड़ी देर चलने दो। इसमें कुछ अच्छे श्रीमत को हम ढूंढते हैं इन बंधनों में, श्रीमत भी थोड़ी थोड़ी उनमें रहती है, प्रेम, सद्भाव, सेवा, ऐसे शब्द उसमें कहीं ना कहीं है उन बंधनों में जो आत्मा को बांधे रखता है। परंतु दोनों को छोड़ना पड़ेगा, अच्छाई और बुराई, और उसके ऊपर निकलना पड़ेगा। एक व्यक्ति है जो अच्छे काम करता है, एक व्यक्ति है बुरे काम करता है, पर दोनों की नजर जमीन पर है, तुम्हें नजर रखनी है आसमान पर, तो दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। वो अच्छा और बुरा, एक है बुरा अर्थात अज्ञान, अच्छा अर्थात इधर सेवाओं के जो बंधन है सारे, क्योंकि सारी माया अब उन सेवाओं में है। मैंपन उस सेवा से जागृत होता है कि मैंने ये किया, ये सबको पता चलना चाहिए, हमने ये किया। ये जब तक पता नहीं चलता है तब तक चैन नहीं होती, चैन नहीं आता आत्मा को, बेकरार रहती है। तो ज्ञान का अनुभव, गुणों का अनुभव, शक्तियों का अनुभव, ज्ञान की भिन्न भिन्न पॉइंट्स का अनुभव, और उन अनुभव में खो जाओ। केवल वर्णन करने मात्र नहीं, थोड़ी सी सेवा करके आ गए तो तुरंत उसका वर्णन करना चाहती है आत्मा, उसका विस्तार करना चाहती है। जो नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क, उसमें तुरंत आ जाता है, फेसबुक ये वो सब आ जाता है। सेवा थोड़ी, वर्णन इतना, उपलब्धियां इतनी, उसका विस्तार इतना। क्या चाहती है? एक्नॉलेजमेंट, दूसरे जाने कि हमने ये किया। ये भी तो बंधन है, सारे ही बंधनों से मुक्त है। तो ये वो बंधन है, कौन सा? सोने वाला। ये वो जंजीर है, इसको काटने की दिल नहीं होती है, ऐसा लगता है चलने दो और थोड़ा इसको। अद्भुत सा सुख प्राप्त होता है अंदर ही अंदर, अवर्णनीय, अव्याख्य। सेवा बहुत अच्छी चीज है, परंतु सारी माया भी उसमें समाई हुई है। सेवा करना निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, परंतु उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई रहती है जो आत्मा को वहीं बांध देती है। दूसरों का कल्याण करते करते खुद ही गिर पड़ते हैं। बाबा ने वो बातें तो कही है, फिर दूसरी बातें भी कही है। बाबा ने तो यहां तक कहा, योग में तुमको सेवा का कोई संकल्प नहीं आना चाहिए, फिर ये भी कहा है तो वो भी कहा है। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है अनुभवी मूर्त। ज्ञान इतना सारा बाबा ने दे दिया है, इतना सारा। कभी बाबा ने कहा मैंने अब तक तुम्हें जो सुनाया है वो क्या है? केवल एक बूंद है। ज्ञान इतना विराट है, मैंने अब तक तुम्हें जो सुनाया है समझना केवल एक बूंद है। आनंद बुद्ध का जो शिष्य था, उसने उससे पूछा कि क्या अब तक तुमने हमें जो कुछ बताया है वो संपूर्ण ज्ञान है? क्या उसके अतिरिक्त भी और कुछ ज्ञान है? कितने सालों से तुम समझा रहे हो और हम तुमको सुन रहे, क्या इसके अतिरिक्त भी और भी कुछ ज्ञान है? क्या ये पूर्ण है? वो उसको एक जंगल में ले जाता है और झाड़ की पत्तियां को हाथ में लेता है, कुछ पत्तियां जो गिरी रहती है। वो कहता है ये पत्तियां देख रहे हो? हाँ देख रहा हूं। इस जंगल में कितनी पत्तियां है? मैंने तुम्हें जितना ज्ञान दिया बस वो इतना ही है, अभी इतना बाकी है। इस जंगल में जितनी पत्तियां है ना, उतना बाकी है, और जो अब तक सुना है 80 साल में वो इतना है बस। कितना सही है, और तुमने उसमें से कितना समझा और कितना बाकी है अब ये तुम निर्णय करो। बाबा ने अब तक 69 से लेकर अब तक की अव्यक्त वाणी है, और वो सारी साकार वाणी है। उसमें बहुत सारी चीजें बताई है, परंतु ये भी कहा है कि मैंने अब तक तुम्हें जो बताया है वो केवल एक बूंद है, और तुमने कितना उसमें से लिया अभी उस बूंद से। यहाँ तो पढ़कर ही नहीं हुई है पूरी अभी तक। अच्छा, पढ़ा भी है तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा था, बस उस टाइम के लिए, उस दिन के लिए याद थी, बाकी नहीं। इसके लिए बाबा क्या कह रहे हैं, रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो जितना, क्योंकि रिवाइज नहीं करते तो रियलाइजेशन भी कम है। सुना बहुत अच्छा, लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। जैसे दुनिया वाले एक उदाहरण दिया है कि कर्म ही कहते हैं कि कर्म ही योग है, कर्म योग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते हैं, कर्म से योग लगाना इसी को ही कर्म योग समझते हैं। लेकिन कर्म योग और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। हमारा कर्म योग दूसरा है, संसार का कर्म योग दूसरा है। विवेकानंद की किताब है कर्म योग पर, परंतु उसमें यही कहा हुआ है कि पूर्ण निष्ठा से पूर्ण खो जाओ उसमें, बस निष्काम, वही कर्मयोग है। पर हमारा कर्मयोग वो नहीं है, हमारा कर्मयोग कर्म और योग का बैलेंस, कर्म करते हुए योग, कर्म में बिजी होना योग नहीं है, कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म करते, इसके लिए ये समान दिए बाबा ने भिन्न भिन्न, कर्म में बिजी हो जाते हो तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। कर्म श्रेष्ठ तो हो जाएगा परंतु वो योग नहीं है, फिर केवल कर्म है वो बस। चलते चलते यही अलबेलापन आता है, तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्म योगी। ये हमारा कर्म योग है, मूल बात है अनुभव स्वरूप बनो, एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ। शब्द है खो जाने का, अनुभव में खो जाने का, शक्ति स्वरूप बन जाओ, स्वरूप बन जाने का। अपने स्वरूप से शक्तियां, आपके स्वरूप से शक्तियां दिखाई दे। अभी भी देखो, अगर कोई में कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए ये कहते हैं ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इसमें सामान्य की शक्ति बहुत दिखाई देती है। तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती है कभी नहीं, तो अटेंशन कम हुआ ना, तो हर शक्ति गुण ज्ञान की पॉइंट आपके स्वरूप में अनुभव करे, और वो तब होगी जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। अगर स्वयं अनुभवी होंगे तो दूसरों को उससे स्वतः ही अनुभव होगा, और जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। एक सेकंड भी अगर किसी गुण वा शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है, और जब सदा अनुभव स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुशनसीबी की झलक अनुभव होगी। तो अनुभव को बढ़ाओ, विधि तो स्पष्ट है ना। अच्छा, सभी खुशनसीब तो हो ही, लेकिन विशेष खुशी मनाने आए हो तो सबको खुशी मिली है। तो आज क्या लक्ष्य रखना है, हर चीज का, हर ज्ञान की पॉइंट्स का अनुभव, हर महावाक्य का अनुभव, केवल पढ़ने मात्र या बुद्धि में रखने मात्र, कंठस्थ करने मात्र, याद करने मात्र और दूसरों को सुनाने मात्र नहीं, खो जाओ। वो जो लास्ट अवस्था है, आखिरी शिष्या जो है उसकी, बोधि धर्म की, चुपी हो गई हो, उसको अभी ये भी नहीं कहना है कि अवाक्य है, ये भी नहीं कहना है कि मौन मार्ग है, ये भी नहीं कहना है कि हाँ विराट है, अनुभव है, क्योंकि वो नीचे आते हो फिर उससे। आप अनुभव में खो जाओ, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा है, और इसकी विधि है रिवाइज करना, हर चीज को बार 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 रिवाइज करना। पता तो है सारे गुण, फिर भी सारे बुद्धि में रिवाइज करना, गुण क्या क्या है रिवाइज करो, ज्ञान क्या क्या है वो रिवाइज करो, और शक्तियां कौन कौन सी है उसको रिवाइज करना। ओम शांति।